Hare Krishna. भक्तों का हार्दिक स्वागत.
हरे कृष्णा. कभी तनु हाथ उठोगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे
हरे
राम 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 हरे हरे. तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के संडे लव फेस फेस्टिवल में. हरी वो. और विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का. तो महाराज बहुत व्यस्त शेड्यूल से हमारे बीच में जो है उपस्थित है. महाराज अपना समय दे रहे हैं तो हम चाहेंगे महाराज का पूरा संघ का लाभ उठाएं कि नहीं उठाएं. तो लाभ उठाने के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन होगा उसको जो है साइलेंट मोड पे कर सकते हैं.
मोबाइल फोन पर साइलेंट मोड पर ये तो हार्ट अटैक के बराबर है.
सब महाराज का जो है धन्यवाद. महाराज का स्वागत करेंगे एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र से. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. पहले कार्यक्रम शनिवार को होता था पर अब इतवार को शुरू. आप इसे कितने वक्त हो जो इस कार्यक्रम में हर रविवार को आते हो और कितने वक्त हो जो कि आज पहली बार आ रहे हो इस रविवार के प्रोग्राम में. हम आपको दो श्लोक पढ़कर सुनाएंगे. ये दो श्लोक भगवतम के साथ में स्कंद में प्राप्त होते हैं. युधिष्ठिर महाराज जिनसे आप सब परिचित हो सुनाई दे रहा है आपको क्लियरली. पीछे भी सुनाई दे रहा है. हाँ ना युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से एक प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर नारद मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं. और ये जो श्लोक है खास करके उन भक्तों के लिए है जो कि व्यस्त जीवन बिता रहे हैं या घर में रहते हैं. आप ऐसे कितने हो जो घर में रहते हो लगभग सभी. ये श्लोक आपके लिए
हरे कृष्ण. सातवां स्कंद 14 अध्याय श्लोक नंबर 1 और 2. महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा हे स्वामी हे महर्षि कृपया करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं.
अनुवाद
कृपया हमारे पीछे दोहराइए. महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा हे स्वामी हे महर्षि कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं.
आपके मन में भी इसी प्रकार का प्रश्न है या आपका ही प्रश्न है. विनीत महाराज को पता था आपका प्रश्न. इसको का तात्पर्य प्रापा जी के द्वारा
पिछले अध्यायों में नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस किस तरह कर्म करने चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि तीनों आश्रम में विषय जीवन बताने की तनिक भी स्थिति स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ का संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन का तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग का इच्छुक हो उसे गृह जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरु की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को ग्रह मूढ़धि अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतया अनजान कहकर प्रस्तुत किया। ग्रह जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनजान रहता है, उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। अतः जितना जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथा कथित सुविधा संपन्न जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपो दिव्यम पुत्र का ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें सुविधा संपन्न स्थिति न उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी तरह से जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करने के लिए ही जीना चाहिए।
आप नारद मुनि का उत्तर भी सुनना चाहते हो? अभी तो आपने सुना युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न, आप सुनिए नारद मुनि का उत्तर।
नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इससे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है।
हरे कृष्ण। ॐ ज्ञानार्जनार्थिनः ज्ञानञ्जनाश्रयेण श्रीगुरु
Amen.
जय श्री कृष्ण ये जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, असल में ये पूछा उन्होंने ये प्रश्न हम सबकी भलाई के लिए। ये तो संभव नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमेशा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के लिए चौथे स्कंद में प्रीतु महाराज की कथा पढ़ते हो, और प्रीतु महाराज को शक्त वैश्य अवतार माना जाता है, पूरे पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनके महल में ब्रह्मा जी के पुत्र कुमारराज ने प्रवेश किया और युधिष्ठिर और प्रीतु महाराज ने क्या पूछा, ये बताइए कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो जब हम किसी संत से मिले अक्सर हम क्या सोचते हैं, कुछ आशीर्वाद मिले, किस लिए, किस लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए? नहीं नहीं नहीं, भौतिक उन्नति के लिए। हम जब कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो, हम शर्माते हैं ये कहने में, आशीर्वाद दो कि हम धनी बने, पर भाव ये रहता है कि भौतिक उन्नति करें। पर जब आप किसी संत से मिलो तो उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे कि इस समय उज्जैन में कुंभ मेला हो रहा है और कई लाखों लोग जा रहे हैं, मैं भी था उधर पिछले हफ्ते। प्रभुपाद जी गए थे अलाहाबाद के कुंभ मेले में 71 में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम यहां मुक्ति की प्रार्थना करने नहीं आ रहे, हमारे हरिनामों की महिमा का प्रचार करने के लिए। तो जो संत हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि इस प्रकार पद जीवों का उद्धार हो सके। युधिष्ठिर महाराज ऐसे तो उन्हें धामराज कहा जाता है, उनके पास तो हर विषय का ज्ञान था, पर उन्होंने हम सब अज्ञान व्यक्तियों की उद्धार के लिए ये प्रश्न पूछा। तो क्या था प्रश्न, कि वो कह रहे जो व्यक्ति घर में रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, उन्हें शिक्षा दीजिए कि कैसे जीवन को उद्देश्य प्राप्त हो सके। पर वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये नहीं कि आप अपना मनमानी उपदेश दीजिए क्या हमें करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, क्या कहा, वैदिक शास्त्र के अनुसार तमाम हर कार्य जो है निर्भर होना चाहिए वैदिक शास्त्र के पर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रेत ज्ञान और भौतिक ज्ञान में महान अंतर है। यह है दिव्य ज्ञान जो कि हमें प्राप्त हुआ है परम भगवान के द्वारा। व्यासदेव जी को भगवान का अवतार माना जाता है और इस ज्ञान में कोई कमी है, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, ये सनातन ज्ञान है। आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं जिसका उपदेश भगवान ने दिया था करोड़ों साल पूर्व सूर्य के देवता को, और यही ज्ञान भगवान ने फिर से अर्जुन को दिया। गीता में आप पढ़ते हो कि अर्जुन के भी अनेक प्रश्न थे, तो भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवास्वान को, और उनसे ज्ञान पहुंचा मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि हालांकि अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं थी, उनको चिंता थी कभी तो भविष्य में कोई पूछ पाएगा ऐसे। अर्जुन ने क्या पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवासन को, जो वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा उत्तर में, मैं सब जनों का स्मरण कर सकता हूं और तुम नहीं। तो प्रश्न और उत्तर, भौतिक समाज में भी प्रश्न उत्तर होते हैं ना, कोई भी राजनीतिक नेता आता है सबसे पहले क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें लोग प्रश्न पूछे, अखबार पढ़ो पूरा अखबार भरा हुआ है प्रश्न और उत्तर के साथ। आप इम्तिहान में बैठने जाते हो, वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उत्तर देते हो। तो हम सब सुबह से रात तक प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, कितने टीवी चैनल हैं जिसमें 24 घंटे न्यूज ही आती है, CNN वो क्या है दूरदर्शन आज तक वगैरह, और हम लोग टीवी तो देखते नहीं है, कभी एयरपोर्ट में देख जाता है। तो प्रश्न होता है हर जगह हो रहे हैं, पर हमें किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, हमें वैसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारे सामने बड़ा सुंदर उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ये बताइए, जो भक्त घर में रहते हैं, जो भक्त दूसरे शब्दों में गृहस्थ आश्रम में है, वो कैसे जीवन को सफल बनाएंगे शास्त्र पर आधारित। श्रीमद् भागवतम में हर विषय का उत्तर है, हर विषय का ज्ञान है। इसी सातवें स्कंद में आप प्रधान महाराज की कथा पढ़ते हो, और आगे जैसे प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहा है, नारद मुनि ब्रह्मचारी जीवन कैसे निभाना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन सन्यास जीवन कैसे निभाना चाहिए, इसका वर्णन कर चुके हैं। समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और चार आश्रमों में। चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी और सन्यास। चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और, तो इस युग में कौन है ब्राह्मण कौन है क्षत्रिय, कोई है ब्राह्मण, कलो सुंदर समवा कहा गया है इस कलियुग में सभी शूद्रों के समान है। भारत में तो हम ये कहते रहते हैं ऊंची जाति नीची जाति है ना, व्यक्ति लड़ते हैं ये साबित करने के लिए हमारा जन्म जन्म नीची जाति में हुआ था। किसी राजनीतिक नेता ने कहा था, किसी लेखक ने, कि भारत एक ही देश है विश्व में जहां लोग लड़ते हैं ये साबित करने के लिए कि हम निजी जाति में हैं। अक्सर सब ये बताने का प्रयास करते कि हम ऊंची जाति के हैं क्योंकि उन्हें फिर ज्यादा सुविधा मिलती है। तो चार वर्ण और चार आश्रम, और इन सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। तो नारद मुनि का जो ये प्रश्न है मानव समाज के सुधार के लिए, तो इसके उत्तर में नारद मुनि ने क्या कहा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घर में रहते हैं आमदन करते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं करें, पर जो नतीजा है उसको अर्पण करना चाहिए कहां, भगवान की सेवा में। जो भौतिक व्याधि व्यक्ति हैं उनका क्या भाव रहता है, हमने ये धन हमारे परिश्रम से कमाया है हम सब एक मिले, तुम साधु लोग जाओ भीख मांगो, ये तो हम इसका भोगेंगे। यहां नारद मुनि क्या कह रहे हैं, नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें क्या माना जाता है, महाजन सही बोल नारदा समूह को हमारा कपिल मनु पदो जन को भीष्म भरी भाई ऐसे क्यों बारह प्रसिद्ध महाजन हैं जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इनमें एक है कौन, नारद मुनि। नारद मुनि का ज्ञान उपदेश भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। नारद मुनि क्या कह रहे हैं, नारद मुनि ये नहीं कह रहे आप अगर गृहस्थ हो घर में रहते हो तो व्यापार धंधा नौकरी वगैरह मत करो, करो वो तो करना पड़ेगा, पर इस भाव से करो कि जो परिणाम है इसका आप उपयोग करोगे किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। और ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये ज्ञान प्राप्त होगा उत्तम भक्तों की संगत के द्वारा। दूसरे शब्दों में नारद मुनि कह रहे हैं उनकी जो उनके प्रश्न का उत्तर है वो ज्ञान प्राप्त होगा उत्तम भक्तों की संगत में। इसलिए आप अनेक श्लोकों में पढ़ते हो कि हमें साधु संघ में रहना चाहिए, जैसे कि ये जो रविवार का प्रोग्राम है, जब प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की न्यूयॉर्क में, आप जानते हो अक्सर जानते हो कि ये साहब हम इस्कॉन की सुवर्ण जयंती मना रहे हैं सारे विश्व में, और क्यों, क्योंकि आज से 50 साल पूर्व न्यूयॉर्क शहर में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की रजिस्ट्रेशन किया था, और साथ में पहला केंद्र भी खोला था कौन से शहर में, आप में से कितने भक्तों ने न्यूयॉर्क शहर का दर्शन दिया है, किसी ने नहीं, बात एक ही। अच्छा, अगर न्यूयॉर्क जाओ तो उस स्थान में जा सकते हो जहां इसको ने पहला मंदिर खोला था, उस स्थान में जा सकते हो, एक पार्क है जिसका नाम क्या है, सब इसको हमें जानते हैं, हमें जैसे जलादूत जहाज ना हर भक्त जानता है जलादूत क्या है, तो तब किसगढ़ पार्क वो बड़ा प्रसिद्ध है, तो साधारण पार्क पर इसका हमें बड़ा प्रसिद्ध बन गया अभी, क्योंकि प्रभुपाद जी उस पार्क में जाकर उन्होंने हरिनाम कीर्तन शुरू किया, इसके द्वारा लोग आकर्षित हुए। तो जब प्रभुपाद ने पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क शहर में, तो थोड़े हफ्तों के बाद उन्होंने ये रविवार के कार्यक्रम की योजना की, उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम आज भी संडे लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट, क्योंकि भक्त बड़े प्रेम के साथ अतिथि भक्तों का स्वागत करते हैं और बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी ने इस रविवार के कार्यक्रम को इतना बल दिया कि शुरू में प्रभुपाद खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाते थे अतिथियों के लिए, समोसा पकोड़ा कचोरी खुद अपने हाथों से, और कई लोग आते थे केवल प्रसाद के लिए, जैसे आज भी वही भाव होगा, अनुभव है कि अगर लेक्चर में 200 आदमी आएंगे तो प्रसाद के लिए 300 तो होंगे, तो हम खुश हैं कंजक प्रसाद खाने बनाने कई लोग आते थे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद जो प्रभुपाद जी बनाते थे अपने हाथों से, वो इतने आकर्षित हो गए प्रसाद के प्रति कि कई लोग भक्त भी बन गए। तो ये साधु संगत के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो रविवार का प्रोग्राम है ये आप लोगों की भलाई के लिए किया गया है। अगर आपको कहे सो मंगल बुध भी रहो तो आप जा नहीं आ सको, तो इतवार के दिन लगभग हर व्यक्ति आ सकता है। मुसलमान देश में हम ये प्रोग्राम वीरवार को करते हैं, संडे को नहीं, बाकी सारे विश्व में इतवार को करते हैं। तो आप भक्तों को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए अपने कर्मों के परिणाम से, और ये ज्ञान उत्तम भक्तों की संगत में प्राप्त हो सकता है। आज सुबह हम सनगर मंदिर में भगवदन भी 34 स्कंद पर लक्ष्य दे रहे थे, जिसमें आप पृथु महाराज की कथा पढ़ते हो कि पृथु महाराज राजा थे पूरे पृथ्वी के। आजकल जब हम कहें ये राजा है तो हो भी राजा तो क्या छोटे स्थान का, पटियाला, इंदौर, हैदराबाद। तो पृथु महाराज पूरे पृथ्वी के पर राज्य कर रहे थे। जो भी परिणाम था सब भगवान के चरणों में अर्पण करते थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे थे ये है असली कर्म योग। जब आप प्रयास करते हो और नतीजे को अर्पण करते हो भगवान की सेवा में। भगवद गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रयास करके सेवा करता है भगवान की, उसे वो है असली सन्यासी। वो असली सन्यासी नहीं है जो कुछ काम नहीं करता, आग नहीं पैदा करता, कुछ किसी सेवा नहीं करता। तो जो व्यक्ति सेवा करता है और भगवान के चरणों में अर्पण करता है वो है असली वैराग्य। तो साधु संगत में रहना बहुत आवश्यक है, और इस विषय का की चर्चा हर स्कंद में है। एक ये पहला श्लोक नहीं है जिसमें साधु संघ पर बल दिया जा रहा है, शुरू से अंत तक इस विषय की चर्चा है। और चैतन्य चैतन्यमृत में भी उदाहरण के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो कि इसका उच्चारण महाप्रभु ने किया था, साधु संग साधु संग रावा माता साधु संगत। तो इस साधु संगत हमें कैसे प्राप्त होती है? एक माध्यम है ग्रंथों के द्वारा। ग्रंथों में है भगवान की वाणी और उनके साथ है तात्पर्य। तात्पर्य में है प्रभुपाद मानाचार्यों की व्याख्या। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कई हजारों भक्त हैं सारे विश्व में जिनका परिचय हुआ इन ग्रंथों के माध्यम से। आप सब जो इसका उनके साथ जुड़े हो जानते हो कि संस्था में प्रचार या ग्रंथों के वेतन की सेवा पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में है भगवान का ज्ञान, और जब लोग पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। तो ये है एक साधन ग्रंथों का अध्ययन। दूसरा साधन क्या है? भक्त भगवत के पास आना। आप किसी भक्त को मिलते हो वह आपको निमंत्रण देता है आप उसका लाभ आते हो, बंधन आते हो, उपदेश सुनते हो और आपके हृदय में ये भाव आता है, हाँ मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रभुपाद जी अकेले गए थे 40 रुपए के साथ अमेरिका, 40 रुपए लेने में $8 बनता था, और रास्ते में 35 दिन की यात्रा में प्रभुपाद जी ने $20 और जोड़ दिया था। एक भगवतन का सेट बेचा अपने जहाज के पायलट कैप्टन को। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे $28 के साथ बस, पर उन्होंने अपनी संगत दी, उपदेश दिया और सारे विश्व में इस प्रकार ये संदेश पहुंच गया। तो ये है साधु संत का प्रभाव। आपका अपना अभ्यास होगा कि जो भक्त इस कार्य को महत्व देते हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं मंदिर आए। हम मंदिर में क्यों आते हैं? कई बार लोग कहते हैं हम तो घर में बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। कई लोग कहते हैं ना ऐसे, भगवान तो हर जगह है, हृदय में भी है। इन व्यक्ति को पूछो, जब आप बीमार होते हो हॉस्पिटल में जाते हो या घर में इलाज कराते हो? हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी सुविधा है इलाज करने की। इसलिए चेतन चरतमृत नाम के ग्रंथ में प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो के मंदिर हैं, केंद्र हैं, ये हैं आध्यात्मिक हॉस्पिटल। हमारी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, सच या झूठ? बहुत गहरा आकर्षण है हम सबका, गहरा आकर्षण किसके प्रति? इंद्रिय तृप्ति के प्रति। आंखों से हम गंदी तस्वीरों को देखना चाहते हैं, कानों से हम गलत शब्दों को सुनना चाहते हैं, जीभ से हम भौतिक विषयों की चर्चा करना चाहते हैं, और बिना भेदभाव के जबान के चस्के के लिए कुछ भी खाने को तैयार नहीं। तो हमारी बीमारी बहुत गहरी है। वी आर इन डीप ट्रबल, सच या झूठ? हाँ, तो हमें खास वातावरण की आवश्यकता है। जब आप मंदिर में आते तो क्या लाभ है? कीर्तन सुनते हो, भगवान के विग्रह का दर्शन लेते हो, कृष्ण कृष्ण बलराम जी राधिक रमन जगरा सुबद बलराम गोड़ताय। तो जब आप इन मूर्तियों का दर्शन देते हो आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? एक भाव ये संभव है, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं, ये एक भाव। दूसरा भाव है, देखो भगवान इतने दयालु हैं, हम सबको सेवा में जोड़ने के लिए अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे मैं देख रहा था बाहर भक्त चंदन के गीत के लिए, अब मैंने कितने भक्तों ने चंदन कैसी का किसना कितने भक्तों ने चंदन घिसने की सेवा की अभी तक। तो चंदन किसके लिए घिसा जा रहा है? चंदन यहां तक उत्सव शुरू हो रहा जो कि आरंभ हुआ था मानंदपुरी के द्वारा। तो हम जब मंदिर में आते हैं हमारा भाव क्या होना चाहिए? कि ये भगवान स्वयं उपस्थित हैं। ये भाव नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, पर ये भाव भगवान के समक्ष आने हैं। इसलिए और भगवान के समक्ष जब हम आते हैं तो क्या व्यवहार होना चाहिए? फिर भगवान को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो भक्तों की संगत में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों की संगत में रहोगे ये समझ पाओगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और उत्तम भक्तों की संगत में रहोगे तो आज जहां हमारी कमजोरियां हैं उनको भी हम दूर कर पाएंगे। अक्सर हम अपनी कमियों को खुद नहीं पहचान पाते, सच है झूठ। आपने अगर अपना चेहरा देखना है कितने खूबसूरत हो तो कहां जाना पड़ता है, आईने के सामने। आईने के सामने मत जाओ, आईने के सहयोग के बिना देखो खूबसूरत हो या नहीं, नहीं कर सकते। तो हमें भक्तों की संग की आवश्यकता है हमारी कमियों को भी दूर करने के लिए, क्योंकि भक्तों के संग में रहोगे वो जो असली मित्र हैं, असली मित्र कौन है, असली मित्र वो है जो कि आपको सहयोग देता है भगवान के शरणागत होने के लिए। तो भक्तों की संग में रहना चाहिए, भक्तों की संगत में रहने के कई साधन हैं। एक है ये शनिवार का कार्यक्रम, फिर रोज सुबह इस्कॉन के मंदिरों में, यहाँ के पंजाबी बाग के मंदिर में भगवतम की क्लास होती है। आप ऐसे भक्त आते हो कभी कभी? आप मैं कितने भक्त हो कभी कभी भगवतम क्लास में आते हो? और भक्ति वृक्ष नामाहत के कार्यक्रम भी होते हैं, उनमें भी प्रवेश करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हमें भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होना चाहिए विष्णु को संतोष करना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यद करोषी यद अश्नासी यद अहोसी नासी यद यद तपस्वसी कौन थे तत्कुरुषो मनम मनम। भगवान कहते हैं ये क्या क्लास सुनना चाह रहे थे, मछले क्लास सुनना चाह रहे तो शांति से बैठा है तो बैठने लो। भगवान कहते हैं यद करोषी जो करना है मेरे लिए करो, जो दान देना है मुझे दो, जो खाना है पहले मुझे अर्पण करो। हर कार्य का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा। तो नारद मुनि बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं और उत्तम भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा, गलत संगत में रहोगे तो गलत ज्ञान मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है असत संगत यहां गए वैष्णव आचार्य कि भौतिक बोधियों की बुद्धि संगत रहो रखो जितना की आवश्यक हो। तो नारद मुनि का जो उपदेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबका ये भाव होना चाहिए विष्णु की सेवा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कैसे भगवान के शरणागत हो सकते हैं, और उन्होंने कहा सबसे पहले क्या, जो अनुकूल है स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्याग दो। ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान प्राप्त होता है साधु संगत के द्वारा, और अगर आपको अधिक ज्ञान हो तो क्या परिणाम होता है, वैराग्य प्रकट हो सकता है। इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, फिर ज्ञान प्राप्त होगा श्रवण के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। तो कई बार भारत में मैंने जैसे कहा कुछ समय पहले पृथ्वीनाथ ने अपने हर कार्य को समर्पण किया भगवान में सेवा में। और प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं ये है असली कर्म योग, ये असली भक्ति योग। भक्ति योग जहां हर कार्य करते हो भगवान की खुशी के लिए। हम साधारण समाज में सोचते हैं भौतिक कार्य करना ही है हमारा कर्मयोग। जैसे भारत में हर व्यक्ति ये जानते हैं कर्मानि वादि कार्यस्य कर्मयोगः। हम शास्त्र में कहा गया है अपना कर्म करो, पर आगे क्या कहते हैं भगवान महाफलेशु वो भूल जाते हैं लोग। भगवान कहते कर्म करो और नतीजा मुझे अर्पण करो। तो ये जो उपदेश है ये उपदेश का हमें लाभ उठाना है और भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा इसका हम लाभ उठा सकेंगे। शुद्ध साधुओं की संगत में रहोगे, उत्तम भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको क्या सुनने में आएगा कि इस कलयुग में दोष ही दोष है। एक उपाय है वो क्या है कृष्ण का नाम। कलि काले नाम रूप कृष्ण बता भगवान अवतारित हुए कलयुग में। प्रभुपाद जी जब कुंभ मेला में गए थे उन्होंने आजीवन की कथा पर रोज प्रवचन दिया क्योंकि ये है असली उपाय। आजीवन की कथा के द्वारा क्या संदेश मिलता है कि हरि नाम ही एक उपाय है। हर युग में अलग अलग उपाय है भगवत प्राप्ति का। उदाहरण के लिए सतयुग का साधन था भगवान का चिंतन, त्रेता युग का साधन था बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर युग का साधन था भगवान के चरण में अंगी भेंट अर्पण करना। वही लाभ कलयुग में प्राप्त हो सकता है नाम के उच्चारण के द्वारा। भगवान ने हमें एक जीव दी है, दो कान दिए हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जीव की एक तपस्या ये है कि अब सदा जीव के द्वारा भगवान का गुणगान करो। जीव की आदत है क्या करने की प्रजल्पा। और जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो क्या सुनते हो प्रजल्पा बंद करो और कृष्ण कथा बढ़ाओ, है ना। तो जीव का उपयोग करना चाहिए हमें इसलिए भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। कानों का उपयोग करना चाहिए भगवान का गुणगान सुनने के लिए। हम शास्त्र में अमरीश महाराज की कथा पढ़ते हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। अमरीश महाराज ने अपने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। तो आजकल काफी यात्रा करनी पड़ती है तो हम पैरों का उपयोग कर सकते हो। मोटरसाइकिल रिक्शा स्कूटर अपनी गाड़ी को भगवान के मंदिर तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने अपने हाथों का उपयोग किया किस लिए, किस लिए भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। अगर कई बार हम भक्तों को अगर कहें मंदिर साफ करो तो वो कहते हैं हम कहीं हम भंगी बनने आए हैं, हमको तो साफ की सेवा चाहिए। कोई भगवान के लिए भंगी बनना भी बहुत शोभा की सेवा है। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं विनम्रता देकर। एक राजा थे महाराज प्रदप क्रोध, उनका भाव था भगवान का दर्शन प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु इनकार करते गए जो बज्जा महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर राजा होते हुए पूरे रास्ते को झाड़ू दे रहा है और पूरे रास्ते को धो रहा है गुलाब के पानी के साथ, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खास दर्शन दिया। महाप्रभु अपना विस्तार कर रहे थे अलग अलग कीर्तन मंदिरों में, तो ये दर्शन केवल कुछ भक्तों को प्राप्त हुआ, इनमें एक थे महाराज प्रदप क्रोध। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अगर आप सदा हरि के नाम जीव के साथ जोड़ना चाहते हो तो क्या आवश्यक है। तिनाद अग्नि सुनिचेना मानी ने मना लेना कीर्तन आदि चलना। अगर कीर्तन सदा करना चाहते हो तो विनम्रता का भाव। कमलेश महाराज ने उदाहरण दिया कैसे मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग हम कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो साधु संग रहोगे तो ये ज्ञान प्राप्त होगा, साधु संग रहोगे तो प्रेरणा मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा, तो इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और भक्ति की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है, श्रवणम कीर्तनम। नारद मुनि ने नर्मदा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया था प्रहलाद महाराज को, जो आरंभ होता है श्रवणम कीर्तनम के साथ। तो सब भक्तों से निवेदन है आमंत्र का जाप कीजिए, ध्यान से सुनिए, साधे संग में रहिए, भागवतम को सुनिए पढ़िए, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। खाओ तो क्या खाना चाहिए, भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे भोग नहीं लगाते हो क्या कर रहे हो। आजकल आप भारत में देखते हो कि भारत के कई इलाके लगभग 33% आबादी के पास इस समय जल की बड़ी तकलीफ है, हम जानते हो नहीं। दिल्ली में शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं है, पर भारत के कई स्थानों में 6-6 दिन में जल नहीं आता। महाराष्ट्र में भी एक शहर है जिसका नाम है जलगांव, जलगांव समझ रहे हो, जल से भरा हुआ, और वहां बिल्कुल जल नहीं आता। तो इसका कारण क्या है, कारण है पृथ्वी पर पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है। आज हमें युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की आवश्यकता है, पृथ्वी महाराज जैसे राजाओं की आवश्यकता है। तो कैसे संभव होगा अगर हम प्रचार करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हरिनाम को जाप कीजिए, और जैसे भगवान का प्रचार बढ़ेगा लोग अपने कष्टों को भी दूर कर पाएंगे। आज क्या है, समाज की स्थिति चिंता से भरी हुई है, चिंता से भरे हुए हैं, हाँ ना, चिंता तनाव क्लेश आत्महत्या की संख्या पिछले 10 सालों में दुगनी हो गई है, धनी देशों में भारत की तो बात ही सोचो। और कारण क्या है, हम भगवान के उपदेश के बिना असली सब प्राप्त नहीं कर सकते। आज लोगों के पास बड़े बड़े मकान हैं खास करके विदेश में, पर अंदर रहने के लिए कोई नहीं है। तो अगर आप सुख शांति चाहते हो तो कृष्ण भक्ति एक उपाय है। हमें गंभीरता से इसे स्वीकार करना है और आगे जाकर दूसरों को भी भाग्यवान बनाना है। भौतिक समाज में अगर आपके पास कोई फॉर्मूला हो धन कमाने का तो आप छुपा कर रखते हो, है ना, कि इसको क्या बताओ मत। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपके पास कोई उपाय है आप तो सबको देना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे अपने साथियों के साथ, उन्होंने भक्ति के खजाने के ताले तोड़ दिए और सबको खुले रूप से बांटा, सब हरि नाम लो और जीवन को सफल बनाओ। तो जैसे आपका जीवन सुख सफल हुआ है, आप दूसरों को भी ध्यान दीजिए, इस माध्यम से अपना जीवन को भी सफल बनाओगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त करोगे। और आप युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। उत्तर क्या है, हमें भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए, और ये ज्ञान कहां प्राप्त होगा, उतना भक्तों की संगत में। तो हर रविवार का आपका निर्णय होना चाहिए कि हमें जरूर आना है। तो आप ऐसे कितनी भक्ति निर्णय करने को तैयार हो, हरे द्वार को आओगे। कई है चक्र आओगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं आओगे तो किसका नुकसान है, आपका ही नुकसान है। पर हम चाहते हैं अब लाभ उठाओ, पके पके के आइए है रविवार को साधु संगत में लाभ उठाइए। हरे कृष्ण।
आपका बहुत धन्यवाद महाराज, आपने साधु संघ की महिमा
बताई।
प्रश्न है महाराज कि जब साधु भक्तों की संगति में आते हैं तो पूरा लाभ उठाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? भक्तों की संगति का लाभ उठाने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
भक्तों के संग का लाभ उठाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो संग में आओ, और सावधानी ये रखनी चाहिए कि हम अपराध नहीं कर लें। पर शुरू में अपराध की चिंता मत करो, नहीं तो आप संग में आओगे ही नहीं। हम लोग अपने संग में आएंगे अपराध हो जाएंगे, इसी तो अच्छा घर नहीं बैठे। और संघ में आना शुरू करोगे तो ज्ञान मिलेगा, सब ये ज्ञान भी मिलेगा अपराधों से कैसे बचना। तो संघ में जरूर आओ। और कोई प्रश्न पूछे?
हरे कृष्ण महाराज कहते हैं कि अगर निरंतर जप करना चाहते हैं भगवान के नामों का तो त्रिनादपि सुनेजिन और तौरदपि सहिष्णु होना चाहिए, तो ये आर्टिफिशियली होता है, कैसे आता है? जैसे कहते हैं सरेंडर से आता है, सब सब लक्षण जितने होते हैं, जितने भी लक्षण है गुण है वो सब सरेंडर से आते हैं, तो ये चीज कैसे डेवलप करें हमारा त्रिनादपि?
क्या विजमित का भाव कैसे आयरन करो? आप चेतन चेतन विधान में पढ़ते हो 26 गुण जो भक्त में होने चाहिए, दिल ढोला एंची ढोला। कई बार भक्त पूछते इन गुरु को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे सेंची हो जाए? तो खुशखबरी है, खुशखबरी यह है सारे गुण अनुकूल होंगे अगर ध्यान पूर्वक जाप करना सीख जाओ। और सारे अवगुण प्रकट हो जाएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक जाप नहीं करोगे। एक एक उपाय है सब समस्या का हल करने के, तो हम सबका प्रयास देना चाहिए कि जाप करें ध्यान से, जाप की जाप ही नहीं पर जाप ध्यान से करें। ओके,
थैंक यू मैम।
ओके, विल स्टॉप इन 2 मिनट, मुझे 5 बजे जाना
है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न महाराज इस प्रकार से है कि आपने बताया कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको एडवांस भक्तों का संग करना चाहिए, उच्च भक्तों का संग करना चाहिए, तो उनके क्या लक्षण है महाराज, कैसे जो है हम पहचान सकते हैं ये
उत्तम भक्त हैं? उनकी रुचि केवल कृष्ण सेवा में है। जब आप उनकी संगत में आते हो वहां से व्यापार राजनीतिक कथा नहीं करते, वो यही प्रयास कर रहे आपको जोड़े शुद्ध भक्ति में। और उत्तम भक्तों का आचरण भी शास्त्र पर आधारित रहता है, ये नहीं मुंह में राम राम आगे क्या, ये नहीं कहें कुछ करें कुछ, जो कहें वही करो और जो कहोगे और नहीं करोगे लोग देख लेंगे। तो बाहर से आपको आदर देंगे, अंदर से कहेंगे ये चापलूसी वक्त है, हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। कभी का हमें सब उसके आना है, सब दोष निकालने के लिए बैठे हैं, आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके ओके, देर हो गई है, पड़ोसी गुस्से में आएंगे। हरे कृष्ण, आपका प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न। प्रश्न है किसी का?
थैंक यू गुरु महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। महाराज ने आपसे जैसे आपने मार बताया कि हमारे लिए खुशखबरी है कि हम सब गुण अपने अंदर ला सकते हैं ध्यानपूर्व जप करके, तो हम ध्यानपूर्व जप करने के लिए क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? और हम
कम से कम जब आप अपने 16 महीने का जप कर रहे हो, प्रयास कीजिए कि माना के अलावा और कोई काम नहीं करो, और आपका प्रिय मित्र सेल फोन तो बाद थोड़ी देर के लिए जाओ, अच्छी तरह हो पाएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। काम पहले जगत सिंह हिजोलीनस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। हरी बोल। महाराज के बहुत ही टाइट शेड्यूल से समय निकाला और हम इतना सुंदर ज्ञान दिया कि जीवन के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम भक्तों के संघ का लाभ उठा सकते हैं। तो महाराज का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरा प्रयास करें कि हम इन महाराज के निर्देशों का अपने जीवन में उतार सकें।